समय ज्ञान चंद्रिका लेक्चर नंबर 5। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोहे सौवसाहूणम्। सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कम्, गुणरयणभूषणुदयम्, जीवस्वपरूवणम् ओच्छम्। आचार्यकल पंडित टोडरामल जी ने लिखी हुई ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका है, जो मूल ग्रंथ गोमटसार पर लिखी हुई है। उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 14 पर आ गए हैं। यहाँ अन्य अन्य पक्षपाती लोग कर्णान योग के अभ्यास का निषेध करते हैं, उनका समाधान करते हुए यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। हमने अभी तक प्रथमान योग के पक्षपाती, चरणान योग के पक्षपाती, द्रव्यान योग के पक्षपाती, उसके बाद व्याकरण शास्त्र न्याय आदि उसका पक्षपाती और अर्थ का पक्षपाती को भी देखा था। उसी की बात आगे बढ़ाते हुए यहाँ 14 पृष्ठ पर नीचे से दूसरी पंक्ति जो है, तथा तुमने कहा, मिला ना, प्रभावना आदि धर्म भी धन ही से होते हैं। यहाँ धर्म ने अन्य जो शुभ जिसको अनुष्ठान कहते हैं, रिचुअल्स कहते हैं, कार्य कहेंगे बाहर में जो दिखाई देते हैं, प्रभावना आदि कोई विधान है, शास्त्र छपवाना है, अन्य जो कोई बातें हैं, तो कहते हैं प्रभावना आदि धर्म भी धन ही से होते हैं। ये प्रश्नकार पूछ रहा है। सो प्रभावना आदि धर्म है, वे किंचित सावध्य क्रिया संयुक्त है। किंचित सावध्य क्रिया का अर्थ क्या होता है? सावध्य ने जिसमें हिंसा पाप होता है उसको सावध्य क्रिया कहते हैं। आरंभ यानी थोड़ा पाप लगता है उसमें, जैसे हम यात्रा में जाते हैं तो गमन करना जाना आना उसमें तो पाप होगा, अन्य भी जो कोई क्रियाएं करते हैं तो उसमें तो पाप होता है, थोड़ा
हिंसा
होती है। उनसे समस्त सावध्य रहित, देखो ये तुमने कहा इतना ही लेना क्या, कि प्रभावना आदि धर्म जो है, क्रियाएं है, वो धन ही से होते हैं, ऐसे अर्थ का पक्षपाती जो कहते कि पैसा है तो सब कुछ है, तो वो क्या कह रहे हैं, प्रभावना धन से होती है। उसके लिए उत्तर है, यहीं पर समाधान है। यहाँ समाधान इसे अलग शब्दों में नहीं बताया है, परंतु ये जो सो प्रभावना आदि धर्म ही लिखते हैं ना, ये समाधान की लाइन है। पंडित जी बता रहे हैं कि जो प्रभावना आदि धर्म है, पंच कल्याण भी करेंगे, अन्य भी बातें करेंगे, तो उसमें तो किंचित सावध्य तो होगा ही, हिंसा तो होगी ही। वे किंचित सावध्य क्रिया संयुक्त है, उनसे, उनकी अपेक्षा से, इन कंपैरिजन टू दैट, समस्त सावध्य रहित शास्त्राभ्यास रूप धर्म है वह प्रधान है। स्वाध्याय करते हैं तो उसमें तो कोई सावध्य, कोई हिंसा तो नहीं होती। अन्य कितने ही कार्य करेंगे तो कुछ चीजें लाना, जुटाना, उसको रखना, उसको जो कोई क्रियाएं करना, उसमें तो हिंसा बहुत होती है। शास्त्राभ्यास स्वाध्याय करते हैं, उसमें हिंसा जरा भी नहीं होती। यदि ऐसा न हो तो
देखो, यहाँ जो धर्म शब्द लिखा है ना, सावध्य रहित शास्त्राभ्यास रूप धर्म, ये हम शास्त्राभ्यास करते तो धर्म नहीं कर रहे, ये शुभ भाव की बात चल रही है। क्योंकि उन्होंने कहा ना कि धर्म आदि प्रभावना जो करना है हमको, धर्म आदि प्रभावना आदि धर्म जो करना है वो तो पैसे से होता है, तो वह शुभ भावों में उत्कृष्ट शुभ भाव
शुभ कार्यों को ही कहा जाता है। यदि ऐसा न हो तो क्या कहते हैं, शास्त्राभ्यास है उसमें पाप हिंसा जरा भी नहीं है, अन्य जो कोई शुभ कार्य है उसमें तो पाप हिंसा तो होती है। यदि ऐसा न हो तो गृहस्थ अवस्था में प्रभावना आदि धर्म साधते थे। प्रभावना आदि धर्म कौन से, मंदिर बनाना है, पंच कल्याण कराना है, विधान करना है, संघ लेकर सबको लेके यात्रा में जाना है, आदि जो क्रियाएं हैं गृहस्थ की उसमें प्रभावना तो होती है, तो उसको छोड़कर संयमी होकर शास्त्राभ्यास में क्यों लगते हैं? ख्याल में, संयमियों के तो ये कोई मंदिर बनाना आदि कोई क्रिया है जो पाप वाली है, वो तो उनसे उनके योग्य तो है ही नहीं, वे तो करते ही नहीं है। तो यदि प्रभावना ज्यादा होती है तो ये करना योग्य अगर होता तो कोई मुनि क्यों बनते?
यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं, देखो इस तरह से भी हम ले सकते हैं, गृहस्थ अवस्था में प्रभावना आदि धर्म चाहते थे यानी पुरानी बात है, उनको छोड़कर संयमी होकर शास्त्राभ्यास में क्यों लगते, यानी उनके लिए यानी मुनियों के लिए भी शास्त्राभ्यास प्रधान है, ये बात यहाँ एम्फसाइज करना चाहते हैं। तथा
शास्त्राभ्यास से प्रभावनादि भी विशेष होती है, शास्त्राभ्यास करेंगे तो औरों को शास्त्र भी पढ़ाएंगे तो उसमें प्रभावना भी विशेष हो जाती है। तथा तुमने कहा धनवान के निकट पंडित भी आकर उपस्थित होते हैं, जो पैसे वाला है तो पंडित भी उसके पास आ जाते हैं क्योंकि कुछ न कुछ धन की प्राप्ति होती है तो उसका समाधान करते हैं। सो लोभी पंडित हो और अविवेकी धनवान हो, वहां ऐसा होता है, पंडित यदि लोभी है तो जरूर ऐसा होगा कि वो धनवान के पास चला जाएगा, और शास्त्राभ्यास वालों की तो इंद्रादिक सेवा करते हैं। ये जब दस पूर्वधारी होता है तो इंद्र वगैरह आकर उनकी पूजा करते हैं, 14 पूर्व ज्ञान प्रकट होता है तब भी इंद्रादिक आके उनकी पूजा करते हैं, तो ये तो शास्त्राभ्यास की महत्ता है कि देव भी आकर उनकी सेवा करते हैं। यहाँ भी बड़े बड़े महंत पुरुष दास होते देखे जाते हैं, ये तो टोडरमल जी ने लिखा है, अभी हमने तो प्रत्यक्ष देखा है ना, कांजी स्वामी के समय की बात है, बड़े बड़े महंत पुरुष, बड़े बड़े धनवान पुरुष दास होते दिखाई दे, क्योंकि जो पंडित है जो ज्ञानी है उनके सामने तो बड़े बड़े पुरुष भी दास होते नहीं कि उनकी शिष्यत्व स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उनके पास पढ़ने के लिए आते हैं। इसलिए शास्त्राभ्यास वालों से धनवान को महंत मत जानो। हमें महत्ता किसकी आती है, पैसे वाले की, कितना दान लिखाया, कितना करोड़ उसने दान दिया, परंतु इसने इतने शास्त्र पढ़े हैं या इतने शास्त्र पढ़ाए हैं, क्या उसकी महत्ता आती है? तो कहते हैं कि शास्त्राभ्यास वालों से धनवान को महंत मत जानो। जिसको शास्त्र की रुचि है, अभ्यास की महत्ता समझ में आती है, तो उसके धन की कोई महत्ता नहीं भासित होती। तथा तुमने कहा, फिर प्रश्न, धन से सर्व कार्य सिद्धि होती है, सो अभी उसका समाधान, सो लिखा है ना वहां से समाधान, सो धन से तो इस लोक संबंधी कुछ विषयादिक कार्य ऐसे सिद्ध होते हैं जिनसे बहुत काल तक नरकादि दुख सहन करने पड़ते। क्या कहते हैं, हमें तो ऐसा लगता है ये तो पैसा है तो सब कुछ है, पैसे से क्या नहीं मिलता, बचपन में हमने भी सुना है एक माँ बाप को छोड़कर पैसे से सब कुछ मिलता है, आजकल तो वो माँ बाप भी वो तो मिल जाते हैं। अच्छा हाँ, तो कहते धन, धन से क्या होता है, विषय संबंधी यानी जो हम कोई इंद्रिय सुख संबंधी जो कोई एसी लगाने हैं, घर अच्छा बनाना है या गद्दे नरम गद्दे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, खाने के लिए चाहिए, सारे धन से तो मिलेंगे, परंतु उससे क्या होता है, बहुत काल तक नरकादि दुख सहन करने पड़ते हैं, क्योंकि विषयों में ही यह जीव लीन रहता है। और शास्त्राभ्यास से ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं जिनसे इस लोक में तथा परलोक में अनेक सुखों की परंपरा होती है, क्योंकि वो तो सातिशय पुण्य का बंध होता है, तो उसके पुण्य के लिए कोई करता नहीं शास्त्राभ्यास, परंतु सहज रूप से ऐसी बातें बनती है तो उसके अनुकूलता सहज में प्राप्त हो जाती है, और उसके तो धन की महत्ता कम हो जाती है। जिसके धन की महत्ता है तो धन के पीछे भागता है, शास्त्राभ्यास वालों को धन की महत्ता कम हो गई है तो धनवान या धन भी उनके पीछे भागता है, सहज रूप से ऐसी बातें बनती है। इसलिए धन उपजाने के विकल्प छोड़कर शास्त्राभ्यास करना, क्योंकि हमारे विकल्प रात दिन किस संबंधी चलते हैं, अभी कैसे धन कमाना है, कैसे बढ़ाना है, कहाँ उसको रखना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है तो हमारा बढ़ जाए, और यदि सर्वथा ऐसा न बन सके तो, यानी वो तो धन के संबंधी विकल्प तो आएंगे, वैसे तो रोज की जो जीवनचर्या है उसके लिए जितना आवश्यक है तो साधन, परंतु हमने उसको साध्य बना दिया है, तो कहते हैं सर्वथा ऐसा न बन सके, सर्वथा धन की बात अगर नहीं छोड़ सकते हैं तो संतोष सहित धन उपजाने का साधन कर, संतोष यानी समाधान, जितना है उसमें समाधानी वृत्ति रखकर धन उपजाने का साधन कर, वो भी कैसे, न्याय से धन की उत्पत्ति प्राप्ति करेगा, शास्त्राभ्यास में तत्पर रहना, जरूरी है कि 12-15 घंटे उसको धन के पीछे दौड़ना पड़े, यदि समाधान ये संतोष वृत्ति है तो उसी में संतुष्ट होकर अधिक से अधिक काल शास्त्राभ्यास के लिए वो जरूर निकालेगा। और धन की ही, जिसके धन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, उसको तो दिन और रात, रात में घर में तो आता है परंतु विकल्प सारे उसी के चलते हैं, रात दिन। देखो ये पहले के जमाने के पंडित भी ऐसे हो गए, भागचंद जी का नाम सुना होगा, वो आगरा में, वो तो एक टोकरी लेके आए थे, फिर इतने ज्ञानी थे वहां के समाज ने उनको कोई ऐसे दुकान खोल के दिया, तो उनके उस जमाने में जो कोई उन्होंने निश्चित किया तो इतनी मुझे प्राप्ति होती है मैं बंद करूंगा, तो इतना मुनाफा हो गया बस अभी मैं दुकान बंद करूंगा, 12 बजे हो गए या 11 बजे हो गए, सुबह दुकान खोलते उनके दुकान के पीछे बाहर तो लाइन लगती थी, क्योंकि बहुत अल्प जिसका डिफरेंस मुनाफे में वो माल बेचा करते थे, और इतना मुनाफा हो गया उस दिन की इतनी कमाई होगी तो बंद कर देते हैं। हम तो क्या करते हैं, ओवर टाइम करते हैं। अब ये तो धन की बात होगी। इस तरह धनोत्पादन, धन के उत्पादन यानी पैसा कमाना, उसके पक्षपाती को इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया। पुनश्च काम भोगादि का पक्षपाती कहता है कि, यानी विषय भोग भोगो, ये अभ्यास करने से क्या होगा, ये जिंदगी कितनी है, भोगो, तो वो कहता है शास्त्राभ्यास करने में सुख नहीं है, बड़ाई नहीं है, इसलिए
बड़ाई यानी मोटापन,
बड़प्पन कुछ नहीं, इसलिए जिनके द्वारा यहाँ ही सुख उत्पन्न हो, ऐसे जो स्त्री सेवन, खाना पहनना इत्यादि विषय, उनका सेवन करना चाहिए, अथवा जिनके द्वारा यहाँ ही बड़ाई हो, ऐसे विवाहादिक कार्य करना चाहिए। विवाह में जो लाखों, अभी लाखों से क्या होता है, हा? करोड़ों भी खर्च करे तो दुनिया कहेगी वाह वाह क्या क्या ये शादी देखने लायक है, तो ये ऐसे करना चाहिए, ऐसे ये पक्षपाती कह रहा। उसको कहते हैं विषय जनित जो सुख है वह दुख ही है। उसको तो लगता है आप दुख कहते हो, आपको नहीं मिलता है ना, इसलिए आप उसको दुख कहते हैं, क्योंकि यहां कारण बताते हैं, विषय सुख है वह पर निमित्त से होता है, क्योंकि हमें सुखी होना है और विषयों से सुख मिलता है मान लिया हमने, तो वो जो विषय है, जो पंचेंद्रियों के विषय, वो सामने होने चाहिए, पहले पीछे और तत्काल, यानी वो विषय भोग करने के पहले, पूर्व में, उसके पश्चात यानी बाद में, और उस काल में भी आकुलता सहित है। ये जो इंद्रिय सुख या विषय सुख है वो कैसे आकुलता वाला है, जब तक नहीं प्राप्त होता है तब तक आकुलता, जब प्राप्त हुआ है तब भी आकुलता, और वो भी छूट गया अभी वो उसको भोग चुके तब भी आकुलता, जिसके नाश होने के अनेक कारण मिलते हैं। किसके नाश होने के? ये जो विषय सुख है उसके नाश होने के अनेक कारण मिलते हैं। आप कहेंगे हम तो सामने पकवान, पंच पकवान रखा है और हम खा रहे हैं, तो उसके कहाँ नाश होगा, ये तो हम हमारे हाथ में है, देखो अभी हम मुंह में डाल रहे हैं, और उसी समय कोई तीव्र आपको वेदना हुई तो, या कोई ऐसे न्यूज सुनते हैं ये अमुक अमुक आपके कोई चल बसा, तो थाली सामने और कौर हाथ में रह जाएगा ना वहां पर, तो उसके नाश के अनेक कारण मिलते हैं। आगामी नरकादि दुर्गति को प्राप्त कराने वाला है, क्योंकि विषयों के प्रति तीव्र आसक्ति भाव जो है, जिसको परिग्रह जो कहा है, ममत्व भाव को परिग्रह कहा, आपके पास कितने पैसे है उसके अकॉर्डिंगली परिग्रह नहीं कहलाता, उनमें कितना हमारा ममत्व भाव है वो परिग्रह है, और वो नरक गति के बंध का कारण है। ऐसा होने पर भी तुम्हारे चाहने से मिलता नहीं है। कितने कितने बातें देखी, परनिमित्त से देखा, पूर्व में, बाद में और तत्काल आकुलता सहित वाला देखा, इसके नाश के अनेक कारण मिलते हैं वो देखा, आगामी नरकादि दुख को प्राप्त करने वाला है, दुर्गति को, ऐसा होने पर भी तुम्हारे चाहने से नहीं मिलता, ये भी बात है, पूर्व पुण्य से मिलता है, हाथ में पैसा होने पर भी चाह से कोई विशिष्ट चीज चाहते हैं नहीं मिलते, पैसे लेके तैयार है, हमें घर चाहिए नहीं मिल रहा है, किसी को शादी करनी है लड़की नहीं मिल रही है, ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो पैसे की कोई कमी नहीं है वहाँ पर।
आप जो बता रहे हो लौकिक सुख की बात बता रहे हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि कहीं पर मंदिर बनने जा रहा है, वहाँ काफी मूर्तियां होगी, और हमें तो पर्टिकुलर नहीं, हमें महावीर भगवान की ही मूर्ति चाहिए, और वो तो भाई ऑलरेडी गई है, अभी आपको पार्श्वनाथ दीजिए, वो भी नहीं है सब, तो अभी कौन सी है, अरनाथ, अरे इसका नाम तक हमने नहीं सुना है, ऐसी की मूर्ति हम लेंगे जरा भी नहीं, तो उसमें भी आकुलता शुभ भाव है। वो मूर्ति को स्थापित करवाने का आपको मौका मिल रहा है, अरे हरेक भगवान तो एक जैसे ही है, वीतरागी और सर्वज्ञ। अरे दिनेश भाई तुमने कितनी मूर्खाई की, ऑल द वे दिल्ली गए, वहां कौन जाने वाला है दर्शन करने को, अरे अब बाहुबली तो लेना चाहिए क्या, नहीं भरत की ली साहब आपने, आपको चॉइस नहीं है। लोग ऐसा भी कहते, मैं ये कहना चाहता हूं यहां जो बता रहे हैं, तुम्हारे चाहने से नहीं मिलता, पूर्व पुण्य से मिलेगा, ख्याल में आया, उसमें भी ये शुभ भावों में भी हमें अपना चॉइस नहीं चलता है, ये बात यहां बता रहे हैं, वो विषय में कहते हैं
या इंद्रिय, हाँ इंद्रिय सुख की बात करें,
हाँ, हाँ, हाँ,
तो हमने 6 पॉइंट्स देखे, परनिमित्त से है, आकुलता उत्पन्न करने वाला है, उसके नाश के अनेक कारण है, नरकादि दुर्गति का कारण है, और चाहने से नहीं मिलता है, तो क्यों मिलता है, पूर्व पुण्य से मिलता है, इसलिए उसको विषम कहा। जैसे खाज से पीड़ित मनुष्य अपने अंग को कठोर वस्तु से खुजाता है, जिसको वो खुजली हो गई है तो खुजाता, क्योंकि वो इतनी पीड़ा है तो खुजली करने से उसको ऐसा लगता है मुझे ठीक हो जाए, परंतु क्या होता है वो रोग और बढ़ता है, खुजली करने से रोग और बढ़ता है, और ये मानता है मैं खुजाने से सुखी हो रहा हूं, तो कहते वैसे इंद्रियों से पीड़ित जीव, उनकी पीड़ा सही नहीं जाती, तब किंचित मात्र उस पीड़ा के प्रतिकार से भासित होते हैं ऐसे जो इंद्रिय सुख विषय सुख। फिर कहते क्या कहते हैं, जैसे कोई रोग है और रोग की पीड़ा सही नहीं जाती, तुम क्या कहते करते हैं, रोग का इलाज करते हैं, वैसे ये इंद्रिय संबंधी जो पीड़ा है, चाह जो है, इच्छा जो है, वही दुख है, वो सहा नहीं जाता, तो क्या करते हैं, विषयों से वो मिटेगी इच्छा ऐसा करना चाहते हैं, तो उसके प्राप्ति करके उसको मिटाना चाहते हैं, किसको, दुख को दूर करना चाहते हैं। यानी विषयों की चाह है वो क्या बताता है, आप दुखी हो, और इंद्रियों के विषयों के प्राप्ति करके हम सुखी बनना चाहते हैं। तो हम दुनिया में भी देखते हैं कि जिसके पास इंद्रियों की सुखों की जो परिपूर्णता है, विपुलता है, वो बहुत सुखी, ऐसे हम भी मानते हैं, अरे वो तो बहुत, उसके पास बंगला है, इतने पैसे, नौकर चाकर है, खाने पीने के इतने, रोज के रोज उसके वैरायटीज मिलती है, वो बहुत सुखी है। यहाँ क्या कहते हैं, वो बहुत दुखी है, क्योंकि इन सारी चीजों से मैं सुखी, उसकी इच्छा है ना, इसीलिए तो उसके पीछे दौड़ रहा है। तो इंद्रियों से पीड़ित जीव, इंद्रियों से पीड़ित है ना, इंद्रियों के द्वारा परवस्तु को भोगने की जो उसकी तीव्र इच्छा है, इंद्रिया तो शरीर की रचना है, उससे तो कुछ पीड़ित नहीं है, परंतु ये तो शॉर्ट में कहने की पद्धति है ना, उनकी पीड़ा सही नहीं जाती, तब किंचित मात्र, पूरा प्रतिकार नहीं हो सकता, किंचित मात्र उस पीड़ा के प्रतिकार से भासित होते हैं ऐसे जो विषय सुख, उनमें झंपापात करते हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं, झपट्टे मारता है, कहते हैं गुजराती में शू कहवा भाई, यानी अभी मैं ये खाऊ वो खाऊ, अभी खाना हो गया, अभी चलो ऐसे में बैठ जाओ, फिर क्या, थोड़ी चाय पीनी चाहिए, फिर क्या, हा? पान खाना है, अच्छा अभी खाने की बात है, फिर कुछ देखने की, फिर कुछ सुनने की इच्छा, ये तो चलते ही रहते हैं। एक इच्छा भी उसके पूर्ति के लिए कुछ चीज सामने आई है तो उसको भोगने के पहले दूसरी आने की इच्छाएं उत्पन्न होती है।
नहीं, वो खाने के बाद घटाघट लो साहब बहुत अच्छा लगता है, क्यों क्यों, अरे वो जो खाया हुआ हजम होता है, भूख लगती है, अरे भैया पेट भरा है तो 6 घंटे आराम तो करने दो, नहीं भूख लगने की दवा, ये झंपा पद,
तो वह परमार्थ रूप सुख नहीं है। पुनश्च शास्त्राभ्यास करने से हुआ जो सम्यक ज्ञान, उससे उत्पन्न जो आनंद, ये अतीन्द्रिय आनंद की बात करें, वह सच्चा सुख है, क्योंकि हमने देखा था पहले ज्ञान होगा, फिर प्रतीति श्रद्धान होगा, सम्यक ज्ञान होगा, बाद में आत्मज्ञान होने पर सम्यक ज्ञान होता है, और वो जो अतीन्द्रिय सुख है वो सच्चा सुख है, क्योंकि वह सुख क्या लिखा है, स्वाधीन है, वहां हमने देखा पराधीन है, क्योंकि पर निमित्त से होता है, आकुलता रहित है, हमने वहां पूर्व में, पश्चात और तत्काल में आकुलता सहित देखा था। तीसरी बात, किसी से नष्ट नहीं होता, और वहां तो देखा था नाशवान है। फिर मोक्ष का कारण है, पहले क्या देखा था, नरकादि दुर्गति का कारण है देखा, और विषम नहीं है, वहां विषम क्यों कहा था, क्योंकि वो तो कर्म के अधीन है ना, पूर्व कर्म के उदय से, पुण्य कर्म के उदय से मिलता था, अपने चाहने से नहीं मिलता था, और ये कैसा है, विषम नहीं है। जैसे खाज की पीड़ा नहीं होती, वहां पीड़ा होती है और खुजलाता था, अब इसको कोई बीमारी ही नहीं है, तब सहज ही सुखी होता है, वैसे वहां इंद्रियां पीड़ने के लिए समर्थ नहीं होती, तब सहज ही सुख को प्राप्त होता है, वह इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती, वो सहज ही सुखी है। इसलिए विषय सुख छोड़कर शास्त्राभ्यास करना यदि सर्वथा न छूटे तो जितना बन सके उतना छोड़कर शास्त्राभ्यास में तत्पर रहना। देखो शास्त्राभ्यास से ही उसकी रुचि बढ़ती जाएगी तो हम अपने स्वयं के ही परिणाम को जांच सकते हैं कि पूर्व में हमारे परिणाम कैसे थे, विषयों के प्रति हमारा कैसे उत्साह होता था और अब क्या हो रहा है, क्या हम उतने ही उसमें उत्साहित है क्या नहीं है, वे हमें अपने को पता चल जाता है। बाह्य अन्य चीजों की रुचि सहज ही छूट जाती है। पुनश्च तुमने विवाहादिक कार्य में बड़ाई होने की बात कही, ये कह रहे हैं ना कि विवाहादिक कार्यों में बहुत पैसा लगाएंगे, बहुत अच्छा हम धूमधाम से शादी करेंगे बच्चों की, तो कहते हैं कि बड़ाई हो जाएगी, तो कितने दिन वह बड़ाई रहेगी, और वो भी आज के जमाने में कोई बड़ाई करने वाला नहीं, ये नुक्स निकालने वाले ही ज्यादा हो गए। खाना तो भरपेट खाएंगे वहां जाके, क्यों, और फिर बाहर आते ही निंदा चालू हो जाएगी। जिसके लिए महापापारंभ द्वारा एक शादी में इतना खर्चा करना है, उसके लिए क्या कहते, महापाप का आरंभ करके नरकादि में बहुत काल तक दुख भोगना होगा, अथवा तुमसे भी उन कार्यों में धन लगाने वाले बहुत है, आप कितना खर्चा कर सकते हैं, तो बड़े बड़े जो अमीर है वो तो और कितना करेंगे, तो उनके सामने आपकी ये शादी विवाह जितना खर्चा किया, जो कोई धूमधाम मचाई थी, वो कुछ नहीं उनके सामने, इसलिए विशेष बड़ाई भी होने वाली नहीं है। शास्त्राभ्यास से तो ऐसी बड़ाई होती है जिसकी सर्वजन महिमा करते हैं, ये महिमा के लिए नहीं करना है, फिर भी सहज में ये बात हो जाती है। इंद्रादिक भी प्रशंसा करते हैं और परंपरा स्वर्ग मोक्ष का कारण है। ये परंपरा क्या होती है, देखो अभी तो शास्त्राभ्यास से उसको सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, साथ में स्वाध्याय भी चल ही रहा है, तो अभी तो वो तो उसके सातिशय पुण्य का कारण है, अभी उसके कारण स्वर्गादिक की भी प्राप्ति होगी, परंतु परंपरा से ने आगे तो संयम भी धारण करेगा, ध्यान में भी बढ़ेगा उसकी बात, तो ये परंपरा से उसको इन्हें कुल कुछ काल के बाद उसको मोक्ष प्राप्त होने वाला है। शास्त्राभ्यास से डायरेक्ट नहीं होगा, परंतु सम्यक दर्शन होने के बाद भी, मुनिरा अवस्था होने के पश्चात भी, यानी मुनिराज जो हो गए हैं उनमें भी ज्ञान और ध्यान की प्रधानता है। शास्त्राभ्यास और ध्यान यही दो मुख्य कार्य है उनके लिए, तो बाद में क्या होगा, ये भी छूटकर स्वरूप में लीन हो जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसको कहते हैं परंपरा, यानी इसका भी अभाव होकर कुछ काल के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो उसको कहते हैं परंपरा मोक्ष का कारण है। ये परंपरा मोक्ष का कारण किसको कहते हैं, सम्यक दृष्टि के जो शुभ राग है वो छूटकर वो स्वरूप में गुप्त होने वाला है, पूर्ण वितराग होने वाला है, तो उसको कहते हैं परंपरा मोक्ष का कारण है। ज्ञानी के शुभ भावों को परंपरा मोक्ष का कारण कहा, तो हमने भी अज्ञानी ने क्या किया है, अरे शुभ भाव परंपरा मोक्ष का कारण है ना, तो पहले में पहले तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना ही कुछ शुभ कार्य करने शुरू कर दिए, व्रत आदि कर दिए, और इसको परंपरा मोक्ष का कारण माना। तो ये जब परंपरा कारण कहते हैं तो ये बात हमें अच्छी तरह से ख्याल में लेनी है। तो ये कहते हैं परंपरा स्वर्ग मोक्ष का कारण है, इसलिए विवाहादिक कार्यों के विकल्प छोड़कर शास्त्राभ्यास का उद्यम रखना, सर्वथा न छूटे तो बहुत विकल्प न करना, यानी तो यथा योग्य जैसे वैसे तो हो जाएगा, परंतु उसी के विकल्पों में ये लगा रहे रात दिन, उसके यहाँ निषेध कर रहे हैं। इस तरह काम भोगादिक के पक्षपाती को शास्त्राभ्यास में सन्मुख किया। इसी प्रकार अन्य जीव भी जो विपरीत विचार से, यानी उल्टे विचार से, कल्पना से ही इस ग्रंथ के अभ्यास में अरुचि प्रकट करते हैं, स्वयं अरुचि नहीं अन्य को भी वैसा उपदेश भी देते हैं, उन्हें यथार्थ विचार से इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख होना योग्य है। यहां अन्य मति कहते हैं, अब ये अन्य मति को ले आए। तुमने अपने ही शास्त्रों का अभ्यास करने के लिए दृढ़ किया। हमारे मत में नाना युक्ति आदि से संयुक्त शास्त्र है, उनका भी अभ्यास क्यों नहीं कराते? ऐसा क्यों नहीं कहते कि सभी शास्त्रों का अभ्यास करो? उसको कहते हैं, तुम्हारे मत के शास्त्रों में आत्महित का उपदेश नहीं है। हाँ, नाम तो लेंगे आत्मा का, परंतु वो सच्चा मोक्ष मार्ग वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं श्रृंगार का, कहीं युद्ध का, कहीं काम सेवनादि का, कहीं हिंसादि का कथन है। और ये भी भगवान के नाम पर ये सब सारी रचना होती है। कृष्ण की लीलाएं बताएंगे या अन्य अन्य बताए, वैसे तो कहां से वो लीला वाला कृष्ण निकाला पता नहीं है, क्योंकि वो तो तीर्थंकर कौन किसका भाई था याद है? कृष्ण के चचेरे भाई कौन से तीर्थंकर हुए? नेमिनाथ, हमने पहले पढ़ा था ना। हाँ, और उनके पुत्र भी मोक्ष गए, और ये स्वयं नारायण तो थे ही, है ना, और तो सम्यक दृष्टि थे। उन्होंने तो ये ऐसी कोई बातें की नहीं। अभी अज्ञानी ने उनका नाम लेकर, उनका अलग रूप देकर सारी काल्पनिक कथाएं रच ली उसके ऊपर। जैसे हनुमान कामदेव था, अत्यंत सुंदर, उसको तो बंदर बना दिया, पूंछ दिखाते हैं, बंदर का मुंह दिखाते हैं, ऐसे थोड़े ही थे वे। तद्भव मोक्षगामी थे, चरम शरीरी थे, अत्यंत सुंदर कामदेव में से एक थे वे। तो ये अज्ञानी ने कल्पना से ये ऐसे रूप बनाए और उनमें फिर उनकी स्टोरियां बना दी। ये सब तो बिना उपदेश के सहज ही हो रहे हैं। क्या कहते हैं, ये श्रृंगार, युद्ध, काम सेवन, हिंसा आदि तो जीव कर ही रहे, इनको त्यागने से हित होता है, वे इनका उल्टा पोषण करते हैं, इसलिए उनसे हित कैसे होगा? वहां वह कहता है, ईश्वर ने ऐसी लीला की है। आई ना बात, ईश्वर की लीला कहकर उसके अनुमोदना करते हैं, उसको गाते हैं, उससे भला होता है। वहां कहते हैं, यदि ईश्वर को सहज सुख नहीं होगा तब तो संसारवत लीला करके सुखी हुआ। यदि उसके अतीन्द्रिय सुख होता तो बाह्य में ये श्रृंगार करके, युद्ध करके क्यों सुखी होता? ये क्यों करता है? बिना प्रयोजन तो मूर्ख भी प्रवर्तता नहीं है। तो यदि ये ईश्वर सुखी होता तो इसमें क्यों प्रवर्तन करता? ये लिखे आगे, यदि वह सहज सुखी होता तो किस लिए विषयादि सेवन और युद्धादि करता? क्योंकि मंद बुद्धि भी बिना प्रयोजन किंचित मात्र भी कार्य नहीं करते। यानी अपना कुछ उसमें प्रयोजन सिद्ध होता है, कुछ लाभ होता है, तो कोई कार्य करेंगे। इससे जाना जाता है वह ईश्वर हमसरिखा ही है, उसका यश गाने से क्या सिद्धि है? हम भी श्रृंगार युद्ध आदि बातें करते और वो भी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हम भी करते और वो भी कर रहा है, तो हमारे में और उसमें क्या अंतर है? पुनश्च वह कहता है, हमारे शास्त्रों में वैराग्य, त्याग, अहिंसा आदि का भी उपदेश है। उसका कहना है, वहां भले श्रृंगार वगैरह, परंतु हम इसका भी तो उपदेश देते हैं ना। वहां कहते हैं, वह उपदेश पूर्वापर विरोध सहित है। पूर्वापर विरोध किसको कहते हैं? कहीं अहिंसा का उपदेश दिया है, कहीं ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया है। कहते ना, वो तो हनुमान ब्रह्मचारी था वगैरह वगैरह, उसके गान गाएंगे, और फिर कहीं कहेंगे वो सती अनुसया की स्टोरी में अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, वो स्टोरी नहीं मालूम, उनमें सती अनुसया हो गई तो उमर गई स्वर्ग में जाने लगी, तो उसके वहां रोक दिया, तुमको एंट्री नहीं है। जैसे वहां कोई एंट्री दिलाने वाला कोई बैठा है वहां पर, क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हें पुत्र नहीं है। तो क्या करना, अभी जाओ पृथ्वी पर जाओ, अभी जो दिखे उसके साथ शादी करो, जब पुत्र हो जाएगा तब यहां आ जाए ना स्वर्ग में। ये ऐसी ऐसी विरोध वाली बातें, कहीं तो अहिंसा का उपदेश देंगे और कहीं वो हिंसा में पशु को होम दे बलि चढ़ाने का भी उपदेश देंगे। तो ये परस्पर विरोधी बातें हैं, कहीं विषयों का पोषण करते हैं, कहीं निषेध करते हैं, कहीं वैराग्य दिखाकर पश्चात हिंसादिक के करने का पोषण किया है, वहाँ वातुल वचनवत प्रमाण क्या? वातुल यानी बहुत बकबक करता है ना, उसको वातुल कहेंगे, बड़बड़िया, क्या कहते हैं?
वातोड़ियो,
वातोड़ियो, हाँ वातोड़ियो, हाँ टकेटियो, क्या कहते हैं वीरेश? उसके वचनवत है, यानी उसके बोलने से कुछ सिद्ध नहीं होता है। पुनश्च वह कहता है, वेदांत आदि शास्त्रों में तो तत्व का ही निरूपण है। वहां कहते हैं वह निरूपण, निरूपण यानी कथन, प्रमाण से बाधित है। प्रमाण से बाधित है यानी प्रमाण नहीं है, यानी झूठा है, खोटा है, असत्य है, अयथार्थ है, यानी ठीक नहीं है, सही नहीं है। उसका निराकरण यानी उसका जो खंडन करते हैं, उनके जो सिद्धांत तत्व बताए हैं, वो क्या कहेंगे? आत्मा नित्य ही है, वो सर्वथा कहेंगे, पर्याय वाली बातें नहीं कहेंगे। तो जो जैनी है वो अपना मत प्रस्तुत करके उनका जो कथन है उसका खंडन करते हैं, निराकरण करते हैं, रूल आउट करते हैं। तो उसका निराकरण जैन के न्याय शास्त्रों में किया है वह जानना, इसलिए अन्य मत के शास्त्रों का अभ्यास नहीं करना। कोई तो कहते मुझे सभी का अभ्यास करके फिर निश्चित करने दो जैन ही सच्चे हैं, तो क्या इतनी आयु है? ये जो अन्य मतियों का जो निराकरण करते हैं जैन आचार्य, उन्होंने भी सभी शास्त्र पढ़े हैं, कब? समय दृष्टि हुए है, अपने शास्त्रों का पूरा निचोड़ पाया है, और अभी तुलनात्मक अभ्यास के लिए अन्य मतियों के भी, हमने देखा ना मोक्षमार्ग प्रकाशक में पांचवें अधिकार में सांख्य मति के कितने तत्व है, वैशेषिक क्या है, जैमिनी क्या मानता है, बौद्ध क्या कहता है, ये सब उन्होंने कितना डिटेल में लिखा है, अभ्यास के बिना थोड़े ही लिखेंगे। परंतु जो कहता है कि मैं सब अन्य पढ़ूंगा फिर मुझे जैनिज्म पढ़ना है, तो उसके लिए ना कहते, अन्य मत के शास्त्रों का अभ्यास नहीं कर। इस तरह जीवों को इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया उनको कहते हैं, अभी जो सन्मुख हुए हैं या जो सुनना चाहते हैं उनको कहते हैं, हे भव्य, क्योंकि रुचिपूर्वक आए हैं ना अभी शास्त्र सुनने को। शास्त्राभ्यास के अनेक अंग है, अंग है तो क्या उसका अर्थ क्या होता है? हा? उसके प्रकार है,
पहलू है,
हाँ क्या, हाँ वाचना पूछना वगैरह, वो कहेंगे भी आगे क्या क्या है। शब्द का और अर्थ का वाचना या सीखना, यानी वो वाचना यानी वो स्वयं पढ़ना या सुनना भी उसमें आता है शास्त्राभ्यास में। सिखाना, उपदेश देना, विचारना, विचारना यानी हमें कोई बात समझ में नहीं आती तो हम पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, वो भी स्वाध्याय का अंग है, ये पार्ट ऑफ स्वाध्याय। सुनना, प्रश्न करना, विचारने ने उस पर विचार करना, ये भी विचारने में आता है। समाधान जानना, बारंबार चर्चा करना, इत्यादि अनेक अंग है, अभी उसको याद करना आदि भी उसके अंग है। वहां जैसे बने वैसे अभ्यास करना, यदि सर्वशास्त्र का अभ्यास न बने तो इस शास्त्र में सुगम और दुर्गम, सुगम यानी समझने में आसान, इजी, और दुर्गम में यानी कठिन, जो समझने में थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है। जरूरी नहीं कि हर एक को कोशिश करनी पड़ेगी, कोई तो इमीडिएटली कैच करता है, हर एक की बुद्धि भी अलग है, रुचि के अनुसार भी उसके ग्रहण होता है। तो कहते हैं इस शास्त्र में सुगम और दुर्गम अनेक अर्थों का निरूपण है, यहाँ कथन है, कहीं तो बहुत आसान है समझने में, कहीं थोड़ा कठिन भी है। वहां जिसका बने उसी का अभ्यास करना, परंतु अभ्यास में आलसी मत होना। पहले ही ऐसा नहीं कि मुझे समझेगा ही नहीं, मैं आऊंगा ही नहीं, ये बात नहीं, जितना समझ में आए उसको बिल्कुल ग्रहण कर, और कुछ बाग जितना हम आगे पढ़ते जाएंगे हमें स्वयं समझ में आता है कि ये कितना कार्यकारी है। देखो शास्त्राभ्यास की महिमा, जिसके होने पर परंपरा आत्मानुभव दशा को प्राप्त होकर मोक्ष रूप फल उत्पन्न होता है। शास्त्राभ्यास करने से ही हम तत्वों का सही स्वरूप जानेंगे, उसका निर्णय करेंगे और तत्व विचार के काल में ही उसमें उपयोग लीन होने से आत्मा का अनुभव सहज हो जाएगा। एक बार आत्मा का अनुभव हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, तो कालांतर से मोक्ष की भी प्राप्ति निश्चित ही है। वह तो दूर ही रहो, उसकी बात तो अभी रखो बाजू में, कहते वो तो होने वाला है ही है, परंतु शास्त्राभ्यास से तत्काल ही। आप कहेंगे हमें वो तो उधारी का धंधा नहीं चाहिए, हमें तत्काल क्या लाभ है उसको बताओ। तो तत्काल क्या लाभ होते हैं उसको बता रहे हैं। तत्काल ही इतने गुण प्रकट होते हैं। क्रोध, पहला पॉइंट, क्रोधादि कषायों की तो मंदता होती है, क्योंकि हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं हमारा उपयोग उसमें है, तो अन्य क्रोध मान माए लोग भले जो कोई सूक्ष्म रीति से चलेंगे वहां पर, परंतु वो तो हीनता होती है। कहा पांच इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति रुकती है कि अभी शास्त्राभ्यास के काल में खाने पीने पहनने के कहीं जाने आने के तो कोई विकल्प है ही नहीं अपने। अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। चार, हिंसादि पांच पाप नहीं होते। छठा, ये पांचवा भी, अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के त्रिकाल संबंधी समस्त चराचर पदार्थों का जानना होता है। क्या कहते हैं, हमारा ज्ञान कितना है? सूक्ष्म ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, सर्वज्ञ तो हुए नहीं हम। सर्वज्ञ भगवान कितना जानते हैं सब पदार्थों को, कब का, अभी का, वर्तमान का, तीनों काल का। और क्या हम अपने सामने वाली चीजों का जानते हैं कि पूरे विश्व में जो कुछ है, लोक अलोक जहां जो कोई पदार्थ है, उन सब को त्रिकाल के और त्रिलोक के, त्रिलोक कहते हैं तभी अलोक सहित त्रिलोक, अलोक सहित त्रिलोक का अर्थ क्या है? हाँ, लोक अलोक, क्योंकि लोक में तीन लोक करते हैं, तीन लोक है ना, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, उसको त्रिलोक कहेंगे, उसी को लोक कहेंगे, और उसके बाहर अनंत अनंत ऐसा अलोक अलोक आकाश है, तो मिलकर आकाश नाम का एक पदार्थ होता है। तो त्रिलोक के त्रिकाल संबंधी, भूत भविष्य और वर्तमान संबंधी समस्त चराचर, चराचर समझते, जीव और अजीव, चराचर पदार्थ, चेतन अचेतन पदार्थ, इसको कहते चराचर पदार्थ, पदार्थों का जानना होता है। तो चराचर या जीवा जीव में कौन से द्रव्य आए, कितने द्रव्य आ गए, दो ही आए ना, आ गए से, अच्छा हाँ, क्योंकि एक तो जीव द्रव्य और पुद्गल आदि पांच अजीव द्रव्य, सब कुछ उसमें आ गए। तो हम अल्प ज्ञानी होते हुए भी इस विश्व में छह द्रव्य है, उसके अनादि, वे अनादि से अनंत काल तक रहने वाले है, प्रत्येक समय में उसकी एक एक पर्याय अपने से स्वयं से होती है, वो स्वयं पूरे अनंत शक्तियों का पिंड, ये सारी बातें अल्पज्ञानी होने पर भी हम जानते हैं। चर और अचर, चराचर,
आपका क्या पूछना,
क्या चराचर में चेतन अचेतन कैसे, यानी समस्त पदार्थ चेतन अचेतन उसको चराचर कहते हैं,
तो उसको ही जीव अजीव कह दिया ना।
जीव लेने,
चेतन पदार्थ, चर में चेतन पदार्थ और अचर में अचेतन पदार्थ, पदार्थ कहो, द्रव्य कहो, एक ही।
अभी हमें कोई स्वर्ग वगैरह नरक नहीं दिख रहे, परंतु आगम के अभ्यास से कितने स्वर्ग है, उनमें कहाँ कहाँ कौन से विमान है, कहाँ कितने जीव रहते हैं, वहाँ के जीवों के गुणस्थान कौन से हो सकते हैं, हम यहाँ बैठे बैठे जान सकते हैं। कैसे जाना? आगम से जाना, क्यों? भगवान ने प्रत्यक्ष जाना और जो बताया उसके द्वारा आगम की रचना हुई, और आगम की रचना से हमने जाना, तो हम भी अल्पज्ञानी होने पर भी समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को जानते हैं, परोक्ष जानते हैं, वे प्रत्यक्ष जानते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष इतना ही भेद है, आगे गाथा आने वाली है। शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान में जो अंतर मानता है वो मिथ्या दृष्टि कहते हैं। क्यों? अंतर तो इतना ही है, हम सभी द्रव्य गुण पर्यायों को परोक्ष रीति से जानते हैं और वो प्रत्यक्ष जानते हैं। देखो, बारहवें गुणस्थान के अंत में और तेरहवें के पहले में क्या अंतर होगा? हमने तो मुख्यतः देखे कि चौदह पूर्व वाला ही क्षपक श्रेणी चढ़ता है इन जनरल, है ना, पूर्व विदों को होता है। तो समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को परोक्ष जानते हैं, तो वो जानने के बाद जो केवल ज्ञान होगा तो उसमें कोई डिफरेंस होगा ना, कि पहले कुछ अन्य जानते थे, अभी प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद हो गया, अब सबको प्रत्यक्ष जानने लगेंगे। हेय उपादेय की पहचान होती है, यानी त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य या प्रकट करने योग्य, उसकी पहचान हो जाती है। आत्मज्ञान सन्मुख होता है, यानी ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। ये हमारे जो उपयोग जो है अन्य अन्यत्र दौड़ता है, तो शास्त्राभ्यास यानी स्वाध्याय में अपनी रुचि बढ़ जाती है और उपयोग अपने आप को पकड़ लेता है, आत्म सन्मुख होता है। अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है, लोक में महिमा यश विशेष होता है और सातिशय पुण्य का बंध होता है। इत्यादि गुण शास्त्राभ्यास करने से तत्काल ही प्रकट होते हैं, यानी वो परभव में जाके ये होगा, वो ऐसी नहीं है। अभी वर्तमान में क्या क्या होगा उसकी बात चल रही है, इसलिए शास्त्राभ्यास अवश्य करना। पुनश्च हे भव्य, शास्त्राभ्यास करने का समय यानी अवसर, जिसको ये ने उसको ये अवसर प्राप्त हुआ है, महादुर्लभ है, उसको पाना महादुर्लभ है। किस कारण सो कहते हैं, यानी शास्त्राभ्यास की जो हम कहते ना संधि अवसर, क्या कहेंगे आप अंग्रेजी में, उसकी दुर्लभता ने उसकी प्राप्ति होना कितना दुर्लभ है वो बता रहे हैं। सो कहते हैं, एकेंद्रियादि असंगी पर्यंत जीवों के तो मन ही नहीं है। ते मन की बात क्यों उठाई? उपदेश सुनना और उसको यथार्थ में समझना, उसको याद रखना, उस पर बारंबार विचार करना और वो निश्चित निर्णय तक पहुंचना, ये कार्य मन के द्वारा होगा। सुनकर समझना जो है, हम कोई बात बताते हैं, जैसे हमारे घर में कोई प्राणी है जो मन वाले, कुत्ता है, बिल्ली है, जो कोई अन्य, उनका नाम लेके बुलाते तो उसको समझता है मुझे पुकार रहे। हम उनको ट्रेन भी कर सकते हैं, ये बात ऐसी नहीं वैसी, ये तो संगी जीव है, जो असंगी है उनमें ये बातें नहीं हो सकती। यही कहते एकेंद्रियादि असंगी पर्यंत जीवों के तो मन ही नहीं है। अब अन्य नारकी वगैरह जो चारों गतियों में मन वाले भी जीव है ना, तो कहते हैं नारकी वेदना से पीड़ित, तो वेदना से उनको अन्य कोई विचार ही वहां करने की फुर्सत नहीं है। तिर्यंच विवेक रहित, मनुष्यों जितनी तो बुद्धि नहीं है, भले संगी पंचेंद्रिय है फिर भी विवेक रहित। देव विषयासक्त, इसलिए मनुष्यों को अनेक सामग्री मिलने पर शास्त्राभ्यास होता है, वो भी अनेक सामग्री मिलने पर, हो कौन सी, अनेक निमित्त मिलने पर, ये कोई पुस्तक चाहिए, समझाने वाला चाहिए, जो इसको निमित्तों में डालना, अनेक सामग्री मिलने पर, जैसे इंद्रिय ठीक ठाक है, शारीरिक व्याधि नहीं है, कहीं हम सत्संग करने जा सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई पीछे कोई ऐसी उपाधि नहीं है, कि अनेक साधन मिलने पर। सो मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होना ही, अब जो मनुष्य है उनके भी दुर्लभता से शास्त्राभ्यास का हो जाता है, परंतु मनुष्य पर्याय मिलना इटसेल्फ कितना दुर्लभ है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से महादुर्लभ है। ये यहाँ जो पंडित जी ने बात बताई ना, द्रव्य से दुर्लभ, काल से दुर्लभ, क्षेत्र से, ये अजब उनका थिंकिंग है। द्रव्य ने संख्या, द्रव्य ने जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य, उसकी बात नहीं है, द्रव्य प्रमाण यानी संख्या। तो यहाँ कहते हैं वहां द्रव्य से समझने के लिए वहां लिखा है ब्रैकेट में संख्या से, लोक में, लोक यानी पूरे लोक में मनुष्य जीव बहुत थोड़े हैं, तुच्छ संख्यात मात्र है। ये जो संख्यात कहे वो पर्याप्त मनुष्यों के लिए कहा, क्योंकि शास्त्राभ्यास तो पर्याप्त मनुष्य ही कर सकेंगे। अपर्याप्त भी होते हैं, लब्धि अपर्याप्त जिसको सम्मूर्छन मनुष्य कहते हैं, एक श्वास में 8-10 बार, इतनी उनकी अल्प आयु होती है। तो यहाँ पर्याप्त मनुष्यों की अपेक्षा कहा तुच्छ, तुच्छ यानी बहुत अल्प, संख्यात मात्र होते हैं। तो अन्य जीव कितने होते हैं, देव कितने होते हैं? हाँ, असंख्यात। और नारकी असंख्यात, तिर्यंच अनंत, निगोद भी तिर्यंच में आए ना, हाँ, तिर्यंचों की संख्या अनंत है। आगे लिखा देखो, और अन्य जीवों में निगोदिया अनंत है और दूसरे जीव असंख्यात है। शॉर्ट में सब बता दिया, एकेंद्रिय अनंत है कहेंगे तो ठीक है, परंतु एकेंद्रियों में से अगर हम निगोद की बात अकेले के उठाते हैं तो निगोद है जो साधारण वनस्पति कायिक है वे अनंत है। प्रत्येक वनस्पति कायिक कितने है? असंख्यात है। अग्नि कायिक कितने है? असंख्यात है। वायु कायिक असंख्यात है। पृथ्वी कायिक असंख्यात, उनके छोड़कर द्विइंद्रिय, तीनिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी, संगी, पंचेंद्रिय, तिर्यंच वगैरह कितने हैं? अपने अपने असंख्यात है। पुनश्च अभी क्षेत्र से बता रहे हैं, क्षेत्र से मनुष्यों का क्षेत्र बहुत छोटा है। छोटे में कितना ले? 2.5 द्वीप मात्र ही है। ये 2.5 द्वीप कौन कौन से 2.5 होते हैं आपको पता है? हाँ तेजल, पता है आपको? 2.5 द्वीप कौन कौन से है? नम नहीं मालूम। अमोल आपको पता है? नहीं पता। नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम पता करेंगे अभी। हाँ बोलो भाई। हाँ जम्बू द्वीप जिसमें हम रहते हैं, हाँ जम्बू द्वीप, हाँ उसके सराउंडिंग एक समुद्र आता है, लवण समुद्र, सराउंडेड बाय धात की खंड कहते हैं उस, वो भी एक द्वीप है, और सराउंडेड बाय कालो दधि समुद्र, वो सराउंडेड बाय पुष्कर द्वीप है, परंतु उस द्वीप को आधा ही करना, क्योंकि पूरे आधे में सर्कुलर ऐसे ऐसा राउंड मानुषोत्तर पर्वत है। अभी जम्बू द्वीप 1 लाख योजन पूरा डायमीटर, उसके दोनों ओर चहु ओर ऐसा है ना, तो हम डायमीटर में लेते, बीच में 1 लाख का तो जम्बू द्वीप, यहाँ 50,000, यहाँ 50,000 सेंटर से, फिर लवण समुद्र। अभी हम एक और गिनती करेंगे, 0.5 लाख जम्बू द्वीप आया सेंटर से, 0.5 लाख जम्बू द्वीप, 2 लाख लवण समुद्र, 4 लाख धातकी खंड, काउंट करना कितना हुआ, 6.5 हुआ, हाँ धातकी खंड 4 हुआ, उसके आगे कालो दधि समुद्र 8 लाख, पुष्कर द्वीप पूरा 16 का है मगर उसका आधा ही लेना है तो 8 लाख वो लेना, ये 8, 8, 16 हुए, और पहले हमने 6.5 देखे थे, 22.5 हो गए, 22.5 एक और दूसरी ओर भी इतना ही, तो कितना हुआ 45 लाख योजन। ये मनुष्य क्षेत्र डायमीटर 45 लाख योजन, उसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है तो ज्यादा हो जाएगा। तो क्या कहते हैं यहाँ पर,
आपने पूछा था कि
ढाई द्वीप, ढाई द्वीपों के नाम कौन से हैं?
वो तो बात ठीक, हाँ। वैसे और क्या क्या है ऐसा?
हाँ। तो और क्या क्या है, देखो ये ढाई द्वीप आते कहाँ है लोकाकाश में, तो मध्य लोक जो है, हाँ। तो पूरे लोक में हमने एक देखी थी त्रसनाली ऊपर से नीचे तक, एक राजू बाय 14 राजू, उसमें मध्य लोक में ये जो बीच वाला जो एक राजू का जो स्क्वायर है उसके अंदर गोलाकार, बाहर से अंदर की ओर हम देखेंगे तो सबसे बाहर स्वयंभू रमण समुद्र है, उसके अंदर स्वयंभू रमण द्वीप है, वो कितना है समुद्र से 0.5 है। हम अंदर से बाहर की ओर जाते तो डबल डबल कह रहे थे, अब बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो 0.5-0.5, उसके पहले एक समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, ऐसे कहां तक आना, जम्बू द्वीप तक। जम्बू द्वीप से गिनेंगे तो जम्बू द्वीप, उसके बाहर समुद्र डबल, उसके बाहर वो द्वीप डबल, ऐसे करते करते कितने हैं, तो एक राजू में कितने द्वीप और समुद्र है तो असंख्यात है। आप बोलो आपको पता है कितने असंख्यात है, बोल दो मिलिंद भाई को। हाँ 25 कोड़ी उद्धार पल्य यानी 2.5 उद्धार सागर, ये पल्ले का माप पहले सुना है आपने, आगे जाके पढ़ने वाले अभी ये पुस्तक में सब कुछ पढ़ेंगे और इन डिटेल पढ़ेंगे। बिल्कुल सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, ये सारे इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं सामने। तो यहाँ तो हम इतना ही देखेंगे क्योंकि बाकी विस्तार तो आगे आने वाला है। तो अढ़ाई द्वीप मात्र ही है तथा अन्य जीवों में
अढ़ाई द्वीप जितना और क्या बड़ा है ऐसा अपना जो
आपका प्रश्न है, ये ढाई द्वीप यानी 45 लाख योजन प्रमाण और क्या बड़ा है आपको पता है, बोलो। हाँ, सिद्ध शिला कितनी है योजन डायमीटर वाली, हाँ डायमीटर है, और उसके विड्थ कितनी है 8 योजन सेंटर में, और बाजू में पेपर थिन है जिसको कहते माखी के पंख जितना है, क्योंकि ऐसे टेपरिंग है ना इस तरह से। तो 45 लाख योजन का और क्या मालूम है, सरवार सिद्धि का विमान 45 लाख योजन है, एक लाख योजन है। हाँ, ये अंत का विमान बताया ना, उसके बदले पहले सेंटर का पहला विमान, इंद्रक विमान जिसको कहते हैं, पहले स्वर्ग के पहले पटल का पहला बीच वाला विमान, वैसे ही नीचे का सीमंतक बिल जो नरक में सेंटर का पहले नरक का वो सेंटर का बिल। तो यहाँ कहते हैं मनुष्यों का क्षेत्र कितना है, ये ढाई द्वीप के बाहर कहीं भी मनुष्य नहीं जाते, मैं कहूंगी कभी कभी पाए जाएंगे। हाँ, कोई उठा के ले नहीं जा सकता ढाई नहीं तो सारे कोई अपने पूर्व फ्रेंड सारे देव आके अपने नंदीश्वर ले जाते। हाँ, मारणांतिक समुद्र, कोई यहाँ का मनुष्य ये ढाई द्वीप के बाहर कहीं का तीरंज होने वाला है स्वयं भ्रमण का, तो वहां तो उसके मारणांतिक समुद्र करेगा। हाँ, आप कह रहे उपपाद की अपेक्षा, उपपाद क्या होता है, जन्म का पहला समय, अभी कोई लोकाकाश के कहीं किसी कोने से अभी नारकी भी ले लो और वो मनुष्य में जन्म लेने वाला है, तो वहां तो मर चुका और अभी ट्रांजिट में है, तो उसको मनुष्य कहेंगे ना। देखो अभी कोई एक इंद्रिय जीव लेते हैं हम, वायु का एक वाला है वात वले में, अंतिम वात वले में, और वहां मरकर वो अभी मनुष्य होने वाला है, तो वहां तो मर गया, तो अभी हम उसको वायु का एक नहीं कहेंगे, वो मर गया तो दूसरे समय में उसके मनुष्य गति मनुष्यायु सब कुछ शुरू हुआ, अभी शरीर ग्रहण नहीं किया है, और वो वहां से उसके दो समय जो लगने हैं तो वहां आ रहा है, उस समय उसको क्या कहेंगे, मनुष्य। अभी त्रसन नाली के अंदर नहीं आया है, ढाई द्वीप के अंदर नहीं आया है, तब कहेंगे हम उपपाद की अपेक्षा वो ढाई द्वीप के बाहर है। ख्याल में था, इतनी सूक्ष्म बातें भी यहां आप सुनने वाले हो। और कब होते हैं, हाँ बोलो, केवली समुद्घात, ये तो आपने सुना है, 13वें गुणस्थान के अंत में सब कर्मों की वो स्थिति समान होने के लिए, तो मूल आत्म प्रदेश मूल शरीर में तो है ही है, पूरे लोक तक फैल जाते हैं, तो है तो मनुष्य और उसके प्रदेश कहाँ है, पूरे लोक में। ये तीन के अपवाद के यानी तीन को छोड़ दो तो ढाई द्वीप के बाहर कोई मनुष्य जा नहीं सकता, ना कोई उठा के ले जा सकता है, ना कोई विक्रिया से जा सकता है, ना कोई कोई अन्य समुदाय से भी नहीं जा सकता। चलो अभी आज अन्य जीवों में एकेंद्रियों का क्षेत्र सर्वलोक है, क्योंकि पूरे लोक में ये सूक्ष्म एकेंद्रिय तो पूरे लोक में फैले हुए है। औरों का कितने एक राजु प्रमाण है, औरों का यानी देवों का अपने अपने स्वर्गों में रहते हैं और विहार करके भी नीचे आते हैं, तो कितने ही राजु प्रमाण उनका क्षेत्र है। तो काल की बात कल पर लेनी पड़ेगी, काल और भाव, ये मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है उसकी चर्चा चल रही है, कल हम और इसको आगे बढ़ाएंगे, अब यहीं रुकते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नो सदा देत हो। तेजन